कब माना, हमारे साथ इस कश्ती में सवार हो जाओ। बेटा अपनी अकल इस्तेमाल करके कहता है कि सावी इला जबलिन, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। या सीमुनी मिनल माई, ये मुझे पानी से बचा लेगा। बेटा मादा परस्त था, एक नबी का बेटा बुरे माहौल की वजह से किस चीज़ का शिकार हो गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम मुसलमानों में अक्सर माँ बाप की परेशानी कुछ इसी किस्म की है कि हम कुछ और सोचते हैं और हमारे बच्चे कुछ और सोचते हैं, और हमारी समझ नहीं आता कि आपस में वेवलेंथ नहीं मिलती, क्या नहीं है। तो आइए आज कुरान पाक से थोड़ी सी गाइडलाइन लेते हैं कि हम क्या करें कि हमारी ज़िंदगियां खूबसूरत हो जाएं और हमारी औलादें हमारी आंखों की ठंडक बन जाएं। और साथ ही साथ ये दुआ भी करूंगी कि अल्लाह ताला हमें अपना प्यारा बना ले, क्योंकि बास दफ़ा हमें अपनी औलादों की और अपने प्यारों की फ़िक्र तो होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके लिए जो असबाब इस्तेमाल करने होते हैं हम उसको लेने से डरते हैं। तो शुरू करूँ मैं? जज़ाकअल्लाह खैर। आप लोग प्लीज़ बैठिए, बेशक तशरीफ़ रखें। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्राहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदु मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदु मजीद। قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه। अल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ईमान वालों को उनके हाल पे छोड़ दे, यानी जिस हाल जिस सिचुएशन में कोई है अल्लाह ताला उनको छोड़ दे। क्या करता है अल्लाह ताला? हत्त यमीज़ अल खबीस मिन तय्यब, यहाँ तक कि वो नापाक से पाक को अलग करता है। अल्लाह सुबहाना ताला का कानून बताया जा रहा है, अल्लाह सुबहाना ताला पाक और नापाक को अलग करना चाहते हैं। फिर क्या होता है? वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब, और अल्लाह ताला ऐसा भी नहीं कि आपको गैब पर मुत्तले कर दे, यानी आपको गैब की खबरें दे दे। हाँ, फिर आपका क्या मुकाम है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी का क्या मुकाम है? फरमाए वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रसुलिही, लेकिन अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से, मैं यशाओ, जिसको वो चाहता है। तुम क्या करो? फामिनू बिल्लाह, बस तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर। सिर्फ अल्लाह पर ईमान काफ़ी है? नहीं, व रसुलिही, और उसके रसूलों पर। फिर क्या करो? वइन तुमिनु, और अगर तुम ईमान ले आओ, व तत्तकु, जी ये फ़ोन से नहीं, फ़ोन बंद कर दीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस होगी। कोई भी किसी को भी पिक्चर लेने की वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं। रिकॉर्डिंग आपको चाहिए होगी, मैं ख़ुद आपको दे सकती हूँ, हमारे पास हो रही है और हम आपको चंद दिन में अवेलेबल भी कर देते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आप अभी भी राइट अवे भी बाद में मेरे से लेना चाहें तो USP होगी तो मैं डाल दूँगी, ठीक है। आयत बड़ी खूबसूरत है, बीच में टूट गया सिलसिला, देखते हैं। फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस ईमान ले अल्लाह और उसके रसूल पर, या रसूलिही, उसके रसूलों पर। वइन तुमिनु, और अगर तुम ईमान लाओगे, वतत्तकु, और तुम तकवा की ज़िंदगी गुजारोगे, किसी का कुछ नहीं होगा। फलकुम अजरुन अज़ीम, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर होगा। सूरत आले इमरान की आयत 179 मैंने आपके सामने रखी। आइए ज़रा आज इसकी रोशनी में हयातन तैयबा कैसी होती है और अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ क्या मामला करता है, इसको देखते हैं। पहली बात देखिए कि अल्लाह ताला मोमिनों की आजमाइश करता है। पीछे हमने बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही आजमाइशें शुरू हो जाती हैं, उसी से बात का आगाज़ करूँगी। हमारे बहुत सारे साथी नए हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर मैं और आप पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं ना, तो उसका नुक्ता आगाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसको आप और मैं कह सकते हैं पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला का नाम बड़ा पाकीज़ा है। जिस ज़ुबान पर अल्लाह का नाम आ जाता है ना, वो ज़ुबान पाक हो जाती है। जिस दिल में अल्लाह ताला का जिक्र आता है ना, अल्लाह की याद, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ आ जाता है ना, हर जगह ऐसे लगता है कि पाकियाँ फैलने लगती हैं। इस दुनिया की सबसे पाकीज़ा चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर आपने कभी गिरती हुई बर्फ़ देखी हो और पास से देखें या दूर से देखें, क्या लगता है? दूध से ज़्यादा सफ़ेद और चांदी से ज़्यादा चमकती, ऐसे ही होती है ना। कभी जहाज़ की विंडो से बाहर झांक कर आपने बादलों को देखा हो, कल भी मैंने यही बात की कि अल्लाह, दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है नीचे या तरक्की पज़ीर है? ईस्टर्न कंट्री में आप सफ़र करके ऊपर आ रहे हैं या वेस्टर्न पे, तेरे बादल बड़े साफ़ हैं, तेरा आसमान कितना खूबसूरत है। आप अपने मुल्कों का रोना रोते हैं, सड़कें गंदी, गटर ख़राब, लेकिन आप अपने मुल्क के ऊपर ही जहाज़ 10,000 फुट की बुलंदी पे ले जाएं, आपको बादल चमकते हुए दिखेंगे। इन्नल्लाहा तय्यिब ला युक़बलु इल्लत तय्यिब, एक हदीस का खुलासा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला पाक है और वो नहीं कबूल करता सिवाय पाक चीज़ों के। ये मौजू इंशाल्लाह हमारी सीरीज़ में आगे जाके आएगा, रिस्क हलाल, रिस्क तय्यिब। लेकिन यहाँ आपको मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे ज़ोर लगाने या वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं आपके लिए कि आपको ये साबित करूँ कि अल्लाह पाक है। आपके दिल दिमाग इस चीज़ पे 100% राज़ी हैं, ऐसे ही है ना। हमें से किसी को अल्लाह ताला की हस्ती के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में, हत्ता कि उसकी बात के बारे में भी ये शक नहीं है कि वो पाक नहीं है, ठीक है? तो जब एक इंसान कलमा पढ़ता है ना, तो पाकीज़गियों का रास्ता खुल जाता है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। जब आपका अपने रब से ताल्लुक़ जुड़ता है ना, फिर आप उन परेशानियों की और उन आजमाइशों की परवाह नहीं करते जो आपको इस रास्ते में आती हैं। मैंने और आपने तो शायद कभी इस तकलीफ़ को नहीं सहा जो देखने में तकलीफ़ लगती है, लेकिन असल में वो इनाम और राहत है। वो तकलीफ़ जिसको आप बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की तकलीफ़ भी कह सकते हैं। मक्का की गलियां और हबशी काला स्याह फाम बिलाल, उसका दिल पाक हो जाता है। और दिल की पाकी को उन्होंने दिल में नहीं छुपाया ये कहकर, क्या दिल से तो मोमिन हो ना, ज़ुबान से कहने की क्या ज़रूरत है? नहीं, अहद अहद की पुकार लगाते थे। एक शख्स के ये ग़ुलाम थे और उस शख्स का नाम था उमैया। इंतहाई बुग़्ज़ था उसको लफ्ज़ अहद से, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल जो पाक हो गया, तो दिल की बात ज़ुबान पर आ ही जाती है। कोई कितना भी छुपाना चाहे, कभी अपने दिल की बात छुपा सकता है? और ख़ास तौर पे उन लोगों से जिनसे करीब का रिश्ता हो। बच्चा माँ से छुपा सकता है, शौहर बीवी से या बीवी शौहर से छुपा सकती है। तो सच्चा ईमान जब दिल में आता है ना, तो छुपता नहीं है। आज मैं और आप अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी के आगाज़ में ही खुद से पूछें, क्या मेरे दिल दिमाग को इस बात का यकीन है कि अल्लाह पाक है और उसके साथ ताल्लुक़ की जो कीमत देनी पड़े मैं देने को तैयार हूँ। बिलाल जब मुसलमान होते हैं तो अहद अहद कहा करते थे, उमैया मरवाता था, गले में रस्सी डालता और गली के उबाश लड़कों के हाथ में बिलाल की डोरी दे देता और कहता, जाओ इसको पहाड़ों पर घसीटो, कुत्तों की तरह जी थड़े उनके निकल जाते होंगे। और बिलाल इस तरह मक्का की पहाड़ियों पे रोंदे जाते थे, लेकिन ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा कि अल्लाह के और भी तो नाम है, आप सिर्फ अहद ही क्यों कहते हैं? कहा इसलिए कि मुझे ये पता है कि लफ्ज़ अहद से इन मुशरिकों को सबसे ज़्यादा चिढ़ा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि अल्लाह ना हो, वो कहते हैं सिर्फ अल्लाह ना हो, तो अहद कहने में तो सारी बातें टूट गई। इतना मरवाता था इनका मालिक इनको कि खुद थक के छुड़वा देता। कहता था तुम्हें मार, तुम्हें दर्द नहीं होता, आप अपने ऊपर लेके सोचे तो सही, ये अल्लाह के रास्ते में आया ना, अल्लाह ताला कबूल करे सबकी कोशिशों को जो हुई। ज़रा 19-20 चीज़ यहाँ हमारी कमी हो गई ना, अगर कुर्सी ठीक ना मिली या मुश्किल पड़ गई या रास्ता ना मिला या कुछ, तो हम निकलते आधा अजर तो यहीं छोड़ जाएंगे शिकवे करते हुए। वल्लाही कितने आरामदेह माहौल में, कितने सुकून से बैठे हुए, लेकिन हमारी ज़ुबान शिकवों और गिलों से भरी रहती है। काम अल्लाह का करते हैं, एहसान लोगों पर जताते हैं, लेकिन जब सच्चा ईमान दिल में आता है ना, तो फिर दिल की हालत बदल जाती है। एक दिन हजरत बिलाल की वालदा को बुलाकर कहने लगा कि अपने बेटे को समझाओ, इतनी मार खाता है फिर इसको जो असर ही नहीं होता। अच्छा, माँ भी अंदर से ईमान कबूल कर चुकी थी, लेकिन ख़ानदान का बड़ा प्रेशर होता है, जो इस रास्तों से गुजरते हैं उनको अच्छी तरह पता है। और जितना ईमान बड़ा होगा, जितना ईमान मजबूत होगा, उतनी आजमाइश सख्त आएगी। तो माँ मुसलमान हो चुकी थी लेकिन छुपाए हुए थी, तो बेटे के पास आई, कहने लगी बेटा क्यों मार खाता है, अल्लाह को तेरे दिल का हाल पता है, तू ज़ुबान से कह दे जो ये चाहता है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहने लगे इसमें हंसने की कौन सी बात है। कहने लगे आज पता चला कि उमैया हार गया और मैं जीत गया हूँ। कहा आज कैसे पता चल गया। कहने लगे कि अगर वो मुझसे हारा ना होता तो मेरी ही माँ को गवाह बनाकर और मेरे आगे सिफारशी बना के ना भेजता, इसका तो उसने मुझसे हार मान ली है। तो माँ कानल्लाहु लियज़रुल मोमिनीन, अल्लाह ऐसा कभी नहीं करेगा कि ईमान वालों को किस पे छोड़ दे। अला मान तुम अलई, जिस पे तुम हो, ये माँ अला तुम अलई क्या है, इसका जवाब आपको सूरत अनकबूत की पहली आयत में मिलता है। जिनको याद है वो पढ़ सकते हैं, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युतरकु अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे ये बात कहने पे कि हम ईमान लाए, और क्या उनकी आजमाइश ना की जाएगी। मतलब क्या है, सीधा सा इसका जुमला बना के देख लें तो ईमान का कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद, क्या हम ईमान वालों को ऐसे ही छोड़ दें, क्या हम उनसे इस कलमे की कोई गवाही अमल की सूरत में ना लें। याद रखिए, जब आप अल्लाह और उसके रसूल के बनना चाहेंगे आप आजमाए जाएंगे। मुझे आपको तो ये मुश्किल पड़ी ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दूसरा दीन छोड़कर अब इस्लाम को माने, और अगर कोई आप में से ऐसा बैठा है तो खुद को थपथपाए, मुबारक दे खुद को। खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनको अल्लाह ख्वाहिशों भरे दीनों से निकाल कर अपने मर्जी के दीन में दाखिल करते, जिसको ख़ुद सूरत मायदा के आगाज़ में अल्लाह ताला ने कहा अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम पर अपना दीन पूरा कर दिया और उसका नाम इस्लाम रख दिया। तो अल्लाह का तो पसंदीदा दीन इस्लाम है, और मैं ही आप ही मुसलमान नहीं है। कुल्लुल्लहू क़ानितून कुल्लुल्लहू मुस्लिमून, सूरज चांद सितारे पहाड़ सब कुछ, सब मुसलमान है। तो मुस्लिम कौन होता है, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो फिर ज़रा देख लें कि मुस्लिम बनने का नुस्खा क्या है। किसको कहते हैं मुस्लिम, आई एम मुस्लिम, वी आर मुस्लिम, यू आर मुस्लिम? तो मुस्लिम कहते हैं उस ऊँट को जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में हो, बिठाए तो बैठ जाए, खड़ा करे खींचे उसकी डोरी तो खड़ा हो जाए, खाने को दे तो 8 दिन का इकट्ठा ही खा ले, ना मिले तो 8-8 दिन पानी पिए बगैर गुजार दे, ये है मुस्लिम। अल्लाह मुझे और आपको क्या चाहते, मेरे और आपसे अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, तुम ऐसे मुस्लिम बनो जैसा मुस्लिम सूरज है, जैसा मुस्लिम चांद है। गर्मी है, सर्दी है, कभी आपने कोई ख़बर ऐसी उड़ती पुड़ती सुनी, सूरज कोई नहीं निकल रहा, अकड़ गया, अड़ गया। हमारी तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं ना, हमारी मशीनें रुक जाती हैं काम करती करती, कितनी महंगी मशीनें खरीदें एंड टाइम पे छोड़ देंगी साथ। सूरज कितना बड़ा है, आज तक कभी आपको सूरज की तरफ से कोई ऐसी खबर मिली कि सूरज निकल ही नहीं रहा, कि सुबह सुबह मैं उठ जाता हूँ सब सो रहे हैं? जब का आज से लेके अगले 25 साल का नक्शा खोल के देख लें, कब सनराइज है कब सनसेट है, आज गैजेट्स ने ये भी साबित कर दिया। ये किसकी वजह से? सूरज मुसलमान है, उसको कहा दिन में आना, दिन में आता है। चांद को कहा तुम रात के राही हो, रात को आना। कभी आपको लड़ाई की आवाज़ें आई आसमान पे? चांद था और साथ सूरज भी आ गया, या सूरज की जगह चांद आ गया? नहीं, ये है इस्लाम, सीधा सा बात है, सीधी सी बात। दो लफ्ज़ों की कहानी है मुस्लिम होने की। अपना सब कुछ उसको दे दो जिसने तुमको सब कुछ दिया, तुम उसके बन जाओ जिसका सब कुछ है, वो तुम्हें इस दुनिया में भी सब कुछ दे देगा और आगे तो उसने तुम्हारे लिए बनाया ही है। आज इस दुनिया में अल्लाह ताला इस्लाम के बगैर जीने का जो हक दे रहा है ना लोगों को, असल में ये आजमाइश है, मोहलत है, टाइम पीरियड है। यू शुड थिंक, अल्लाह ताला चाहता ना तो ऐसी रूहों को पैदा होते ही मार देता जिन्होंने दुनिया में आकर अल्लाह की नाफरमानियाँ करनी है और इंसानियत का भी जीना धोबर करना है। और अल्लाह को इसका हक था क्योंकि वो अल खालिक भी है और मालिक भी है। यू ही व युमीत उसका काम है, अल हई और अल मुमीत है वो उसके हाथ में है। हमें ज़िंदगी दी भी उसने तो ले भी सकता है, क्या बड़ी बात है। लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं करता? ताकि अल्लाह ताला देखे क्या, हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन तैयब। आई विश कि आपको ये आयत ज़ुबानी याद होती। अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, स्क्रीन पे मेरे सामने बिल्कुल आप देखिए अरबी आयत लिखी हुई है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने रब से बातें कर रही हूँ। अल्लाह ताला आपको कह रहा है कि बंदो मैं तुम्हें पाक करूँगा। आज इस दुनिया में लोग घुले मिले रहते हैं, एक ही छत के नीचे नूह भी है तो बेटा कनान भी है। अभी हमने तिलावत सुनी ना, कुफर और इस्लाम की हक कशमकश, बातिल और नाहक की कशमकश। बेटा नबी है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हुए उसको 900 साल हो गए और बेटा अकल इस्तेमाल करके कहता है मैं तुम्हें नहीं मानता। लेकिन नबी का बेटा काफिर तो नहीं होता ना, मुसलमान ही पैदा हुआ था ना, वैसे तो हर बच्चे ही मुसलमान पैदा होता है। लेकिन हजरत नूह का एक बेटा, चार थे कुल, तीन बेटे इस्लाम पे थे, साम हाम और याफिस। ये आज जितनी नस्लें चल रही हैं उन्हीं तीन से चल रही हैं। एक बेटा था उसका नाम याम भी कहते हैं और कनान भी आता है, वो बुरी सोहबत का शिकार हो गया। बड़ी सोचने की बात है, अच्छे अच्छे माँ बाप की औलादें एथियस्ट हो रही हैं, आज काफिर हो रही हैं। कैन यू बिलीव? मैंने अपने गुनाहगार कानों से ये बात अगर ना सुनी होती तो कभी आपसे शेयर ना करती कि आज लोग पार्टीज मुकर्रर करते हैं, यानी जो खुलासा बात का कि लड़कियों में से एक फ्रेंड की तरफ से पार्टी का इनविटेशन है। मुस्लिम ब्रॉट अप, माँ बाप भी दीन पे, बल्कि काफ़ी क्लोज किसी मस्जिद के, और बच्ची ने पार्टी किस बात की है? आई वॉन्ट टू गिव यू अ सरप्राइज़। अच्छा जी, सरप्राइज़ क्या होगा? मैं उस दिन खोलूँगी। आई वॉन्ट टू टेल यू बाई माई सेल्फ, कि मैं तुम्हें अपने मुंह से बताना चाहती हूँ बजाय इसके कि तुम किसी और से सुनो और तुम ना समझो। अब आप सोचिए कितना बड़ा क्याओस होगा और सोसाइटी में कितनी बातें होंगी, भला पता नहीं क्या ये कौन सा कोई इधर से बम फूटना है। और आपको तो व्हाट वाज द डिक्लेरेशन, आप दिल बड़ा करके सुनिएगा। आई वॉन्ट टू डिक्लेयर आई एम एथियस्ट, आई एम नॉट अ मुस्लिम, अब मैं मुस्लिम नहीं रही, एथियस्ट बन गई हूँ, दहरियत लादीनियत। वल्लाह ही ये बात मैंने अपने कानों से सुनी और हमारे बिल्कुल करीब की बात है जहाँ ये बात हुई कहीं। कैन यू बिलीव, आज तक ये बात तो आपने कभी ना सुनी थी। ये तुम सुनते थे कि हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, ये तो आप सुनते थे कि आप बच्चियाँ बच्चों वाले कपड़े पहनने लग गई, कपड़े अच्छे नहीं पहनते, ये बहुत कुछ सुनते होंगे। लेकिन आज तक मैंने ये बात कभी नहीं सुनी थी कि मुसलमान माँ बाप का बच्चा बच्ची दीन छोड़े। यही कनान के साथ हुआ था। वजह क्या? बाप क्या कह रहा है? साहब क्या कहते हैं, या बुनैयर कब माना, आज हमारे साथ क्या काफिरों में ना रहे। मुफसरीन लिखते हैं कि हज़रत नूह का बेटा बुरी सोहबत बैड कंपनी की वजह से कुफर पे चला गया। नाशुक्री की अब किस दर्जे का काफिर था हमें उसकी तो फिक्र नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ अपने तसव्वुर की आंखों से कि बूढ़ा बाप है, दीन की खिदमत करता है, ज़हन में बड़ी लंबी दाढ़ी सफ़ेद रंग की और बूढ़ा ज़ईफ नूह डेडिकेटेड
900 साल
लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते बुलाते 9 सदियों से ज़्यादा गुजर गई और बेटा उसकी बात ही नहीं सुन रहा। बाप की नज़र अल्लाह के असबाब पे है, कमन कश्ती में आ जा, एरकब माना, टूटी फूटी कश्ती। सूरह नूह में पढ़ लीजिए, सूरह कमर में पढ़ लीजिए, सूरह हूद की इन आयतों को जाके पढ़ लीजिए, इसके अंदर ये कहानी मिल जाएगी आपको। छोटे छोटे कील और लकड़ी की तख्तियाँ जोड़कर बनाई हुई कश्ती अल्लाह के हुक्म से बच गई, जूदी पहाड़ के साथ जाके लग गई और बाप की आंखों के सामने बेटा डूब गया और नूह का बेटा डूब गया। कहाँ किसकी कित क्या मजाल है, कौन कह सकता है कि कल मैं तुम्हें बचा लूँगा या तुम मुझे बचा लेना। अगर बचा सकते बाप तो नूह कभी बेटे को डूबने ना देता, और अगर वो औलादें माँ बाप को बचाने लग जाएं जो कुफर पे हैं तो कभी फिर इब्राहिम का बाप जहन्नम के पास बिज्जू की शक्ल में कीचड़ में लतपत न लेटा होता, जो सही रिवायात से मिलता। तो याद रखिए ये कलमा तैयब को छोटी चीज़ नहीं है। बस दफ़ा हम अपनों के रोब में आ जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान बिरादरी, दीन छोड़ना कोई छोटी बात नहीं, ये है वो है, तो दुनिया में हम उनकी थोड़ी सी नाराज़गी नहीं देख सकते ना, कल हमें उनको जहन्नम में जलता जलाता देखना पड़ेगा। तो अल्लाह पाक करता है, लेकिन सच्चा ईमान दिल में आ जाता है ना तो परवाह नहीं रहती, ये तो याद रखिएगा। जैसे बीबी आसिया को परवाह ना रही, हत्ता यमीज़ल ख़बीसा मिनत तैयिब। बीबी आसिया कौन थी? एक मैरिड खातून, शादीशुदा औरत है, और आज की ज़ुबान में अगर आप कह दें तो फर्स्ट लेडी, क्वीन, बादशाह वक्त की बीवी होना कोई छोटी बात है, और बादशाह भी कौन जो ख़ुद को अना रब्बुकुमुल आला कहलवाता था, फिरौन। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास पैगाम लेकर आए तो क्या हुआ, सबको ज़ुबान ही याद होंगी ये बातें। फिरौन की अना पे चोट पड़ी कि आज तक तो मैं ख़ुद को खुदा बनाकर लोगों के नफ़े नुकसान का मालिक खुद को बनाता था, ये पता नहीं क्या नई बात लेकर आ गया। खैर लंबा सिलसिला चला, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मौजज़ात दिखा दिए, यद बैज़ा और असा फेंक के साम बनना। फिरौन कहने लगा ये तो जादू है। कहा अच्छा जादू है तो मुकाबला करा लो, जो बड़ा जादूगर होगा वो जीत जाएगा। कहा ठीक है, सारे शहर से हरकारों को भेजा और जादूगर जमा हो गए। कहा कि भरी महफिल में फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को रुसवा करेगा, लिहाजा लोगों को फ्री ट्रांसपोर्ट दे के बुलाया गया, सब आओ आके ज़रा मूसा के रुसवा होने का मंज़र देखो ना। उस वेला खुद फिरौन ने मूसा का पैगाम आम करवा दिया। मूसा बेचारे के पास तो एक माइक भी नहीं था कि 10 की बजाय 100 लोगों को सुनवा ले, राइट, रिसोर्सेज कोई भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि बस दफ़ा अल्लाह फासिक से भी अपने दीन के काम ले लेता। जैसे फिरौन की नीयत तो ख़राब थी, उसने सोचा कि जादूगर जब इतने बड़े बड़े आएंगे फिरौन के मूसा के सामने, जब इतने बड़े बड़े जादूगर खड़े होंगे तो मूसा का ये जादू क्या चलेगा, तो कौम सारी देख लेगी कि मूसा झूठे हैं और जादूगर सच्चे हैं। पर अल्लाह ताला ने क्या किया, वही जो सूरह बनी इसराइल में नबी सल्लम के लिए कह दिया, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़, कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल चला गया, और बातिल तो है ही जाने वाली चीज़। और ऐसा ही हुआ, मूसा को जादू होता तो वाकई मूसा हार जाते, अनाड़ी जादूगर थे, मुकाबले में इतने बड़े बड़े थे। लेकिन मूसा ने जो ही वो असा फेंका और वो लाठियाँ फेंकी तो वो फिरौन के जादूगरों ने जो रस्सियाँ और लाठियाँ फेंकी हुई थी वो सबको निगल गई। तो जादूगरों को समझ आ गया कि ये जादू नहीं हो सकता, ये जादू अगर होता तो हम जीतते, यही होता, लिहाजा वो सब झुक गए। वह खुना लिखा झुका ही दिए गए, और जब ये मंजर देखा लोगों ने तो जिनके दिल में हक की तलब और तड़प थी ना वो भी झुक गए, और उन झुकने वालों में बीबी आसिया थी। अब इमेजिनेशन में आज के दिन की खबर लाइए, ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आज का दौर होता तो कितने अब तक ब्रिटेन निकल चुके होते, दुनिया के इतने बड़े बादशाह, दुनिया में इतने बड़े फला हुकूमत वाले की बीवी मुसलमान हो गई, थूम मच जाती ना। अब बीबी आसिया, अब आप और मैं अपने ऊपर लेके सोचते हैं। बस दफ़ा ख़वातीन अपने ससुराल और अपने शौहर को ना कुन सॉरी शौहर और घर वालों का नाम लेकर ये साबित करती हैं कि ये हमें दीन पे नहीं आने देते। मैंने तो देखा बेचारी औरतें ये भवों के चार बाल भी सिर्फ इस सोच से नहीं छोड़ती कि मियाँ को नहीं पसंद। शौहर नाराज़ होते हैं, कौन सा मियाँ जो आपके एक एक बाल को आके गिनता, इतना फारिग है तो उसको किसी काम में लगा दीजिए। जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर वाकई किसी को कोई रोक सकता ना अल्लाह का बनने से या अल्लाह की बात मानने से तो बीबी आसिया को फिरौन रोक लेता, कैद में डलवा दिया। ये वाक्य आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, कुरान पाक में मौजूद है, सूरह तहरीम में इसके इशारे मौजूद हैं। और जब ये हुआ रातों को रोता था कि आ जा वापस, कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, हक देख लिया, अच्छा भी ठीक है देख लिया तो अब क्या करूँ। कहने लगा तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा, और फिरौन की सूली वो नहीं थी जो आज के दौर में है कि गले में रस्सी डाल के लकड़ी यानी किसी जगह तख्ते पे डाल देना, ये नहीं था उसका, बल्कि वो क्या थी, अगर आप इस दीवार को जेहन में रखिए ना तो हाथ और पाँव यूँ खड़े करा के हाथों में और पाँव चारों में दोनों हाथों में कील लगवाता था, ठुकवा देता था कि यहाँ सिसक सिसक के मर जाओ, और जब जान निकलेगी तो तड़पेंगे तो हाथ भी नहीं अपने और पाँव भी नहीं अपने। ये फिरौन का रिवाज है ये सब कुछ करने का। तो लिहाजा याद रखिए बीबी आसिया आजमाई गई। फिरौन का ख्याल क्या था कि बीबी आसिया मेरी इन गीदड़ धमकियों या गीदड़ भपकियों या मेरी इन धमकियों की वजह से पीछे हट जाएंगी, लेकिन अल्लाह तो अपना फैसला कर रहा था। हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन तैयब, फिरौन खबीस था, बीबी आसिया तैयब थी, याद रखिएगा। और अल्लाह का वादा है सूरत नूर में, अत्तैयबात लित्तैयबीन और अत्तैयबात अल खबीसून लिल खबीसात, तकरार है दोनों तरफ से। पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं और ना पाक मर्द ना पाक औरतों के लिए। एक घर में थे, एक छत में थे, पता ही ना चलता अगर ये आजमाइश ना आती कि आसिया जैसा हीरा फिरौन के घर में पड़ा हुआ। आई मुश्किल, आजमाइश तो आई, लेकिन बीबी आसिया ने क्या चूज़ किया? जब फिरौन ने धमकी दी कि मरवा दूंगा तो कहने लगी देर किस बात की है, रब्बिब निली इंदक भई तन फिल जन्ना, सूरह तहरीम की आयत है, कि अल्लाह मेरे लिए अपने करीब ही घर बना दे, मैं तो उदास हूँ आपसे, मैं तो तरस तरस रही हूँ। देखिए अपने आप को पूछिए, मैं अल्लाह से कितना प्यार करती हूँ, कितनी तैयब सोच है मेरी अपने रब के बारे में, मैंने अपने इस दिल के बर्तन को कितना तैयब किया हुआ क्योंकि इसमें अल्लाह की याद है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, क्या मैं अपने अल्लाह की मोहब्बत जिस दिल में रखना चाहती हूँ उसको मैंने कुफर शिर्क निफाक और गंदगियों से भरा हुआ है। गंदे ग्लास में तो हम किसी को पानी नहीं पीने देते, तो दिल के बर्तन को साफ करना पड़ेगा अगर पाक जिंदगी बसर करना चाहते हैं। अल्लाह की मोहब्बत नापाक दिल में कभी नहीं आती, अल्लाह जुदा करा देता है। तो बीबी आसिया जुदा करा दी गई, अल्लाह ने आसमान से वो घर दिखा दिया जो जन्नत में जाकर बीबी आसिया को मिलने वाला है। तो याद रखिए जिस दिल को यकीन आ जाता है कि रब है, फिर वो वक्त ज़ाया नहीं करता, वो दूसरों से पूछ पूछ के अल्लाह का नहीं बनता। आप नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे अगर मैंने ये काम किया, आपको ये काम मेरा पसंद आ जाएगा? अच्छा आप बिखरे बिखरे, नहीं 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 नहीं, मैं असल में उनको नाराज़ नहीं देख सकती, मैं फलां की आंखों में बेगानगीत नहीं देख सकती। कैसे, यानी किसी की बात याद आ गई? नया नया जब कुरान ज़िंदगी में आता है ना, आप में से अगर किसी के नहीं आया तो मैं आपको दुआ दे के जाऊँगी कि अल्लाह आपको कभी कुरान समझे बगैर दुनिया से ना लेकर जाए। यकीन करें फीकी ज़िंदगी, चाय पी चीनी के बगैर, खाना नमक के बगैर जितना बदमज़ा है ना, ये तो बहुत छोटी मिसाल है। इस कुरान को अपने लफ्ज़ों में समझे बगैर, क्या आपके सामने अरबी खुली और आप उसको पढ़ें, ना तर्जमे की ज़रूरत, ना किसी उस्ताद से पूछने की ज़रूरत, ना मुफ्ती से फतवे की ज़रूरत, ना किसी शेख से कोई मदद लेने की ज़रूरत, आपको अपने रब की बात समझ आ रही है, ऐसे शख्स की ज़िंदगी का क्या कहना। जो फिर उसकी बात है वो तो दूसरे की हो ही नहीं सकती। क्यों किसी ने कहा कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। आपको रब की बात समझ आ रही है, आप किसी और से बोलेंगे? आप बताइए सर, आप फ़ोन पे बात कर रही हैं अपनी दोस्त से, बड़ा मज़ा आ रहा है, दिल की बातें, उसकी बातें, उसके दुख उसके सुख, बीच में आ जाए किसी दूसरे तीसरे की कॉल लेते हैं, आप कहते हैं सॉरी मैं बिज़ी हूँ। और जब किसी बहुत प्यारे के साथ हो तो बाहर क्या लिख के लगवा देंगे, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम नॉट अवेलेबल। क्या अपने रब के साथ हमें ये महसूस होता है? नमाज़ पढ़ते हैं तो उस वक़्त अल्लाह से ये ताल्लुक़ महसूस हो रहा होता है कि मुझे तो होश ही नहीं। एक शख्स थे, किसी जंग में तीर खुब गया, हड्डी में चला गया, अब निकालने में उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जितनी लगने में हुई होगी। ज़रा सा हाथ लगाएं तो चीख निकले, इतने में नमाज का वक्त हो गया। तो कहने लगे कि मैं जब नमाज में होता हूँ ना तो मुझे उस वक़्त याद नहीं रहता कि मेरे इर्द गिर्द के हैं, तो तुम ऐसा करना कि उस वक्त कोशिश करना मेरा तीर निकालने की, शायद कम दर्द हो। और नमाज शुरू हुई, शुरू कर दी। नमाज पढ़ने के बाद कहने लगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने क्यों नहीं निकाला? देखिए तीर खुबे में, हड्डियों में, और फिक्र है हैया अलसला और हैया अलफलाह की, इससे भी तैयब ज़िंदगी कोई होगी, इससे भी पाकीज़ा ताल्लुक़ होगा। लोगों ने कहा आप क्या बात करते हैं, आप तो अभी पहली रकत के रुकू में गए थे तो हमने तीर खींच लिया था। हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन तैयब। और अगर दिलों का हाल ये हो कि जो भूली बिसरी बात है वो नमाज में याद आ जाए तो दिल पाक नहीं है। आपको अगर अपने रब से बात करते हुए मज़ा नहीं आता ना, तो याद रखिए कि रब को भी आपसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। कुछ सी हदीस है, अना इंद ज़न्न अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के बराबर हूँ। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है ना, मैं उसके साथ वैसे ही मामला करता हूँ। वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसको दिल में याद करता हूँ। वो मुझे किसी महफिल में बैठ के याद करता है तो मैं उससे बड़ी आला महफिल में उसका जिक्र करता हूँ, यानी फरिश्तों की महफिल में। तो ये तो आपके दिलों के सौदे हैं। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे ना तो आप रब को अपनी बातें सुनाते हैं। ये नमाज़ क्या है? दुख सुख है, दुखड़ा है। तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। ये तो दिन में 5 दफ़ा एक कन्वर्सेशन है। मैं नहीं मिसाल देते हुए कह सकती, लेकिन अल्लाह ने अपने लिए मिसाल दे दी है कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है रब अपने एक बंदे को। तो माँ बेटी का जो दुख सुख है वो क्या दुख सुख होगा? और शौहर की बीवी को और बीवी की शौहर को तसल्लियाँ, क्या तसल्लियाँ होंगी जो रब बंदे को तसल्लियाँ देता है और जो बंदा अपने दुख सुनाता है। जितनी गीबतें करनी है लोगों की करिए, मगर एक ज़ात से, अल्लाह। जितने गिले शिकवे नाराज़गियाँ लोगों के मामलात में, जो खराबियाँ हैं ना आपको लगता, अल्लाह से बात कीजिए, क्योंकि दोस्ती है। देखिए बात करने के लिए ताल्लुक़ चाहिए होता है। ताल्लुक़ के बगैर आप किसी से मिलते हैं? कोई आपको बुलाता? सारा दिन नंबर पे हाथ रहते हैं किसके? ज़ुबानी कौन कौन से नंबर याद है जिनसे ताल्लुक़ है? मिलते किन को जिनसे ताल्लुक़, बुलाते किन को जिनसे ताल्लुक़? तो मेरा रब से क्या ताल्लुक़ है? ये कोई ताल्लुक़ नहीं, 1,00,000 दफ़ा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह रखा हुआ है, कब्र में काम आएगा, मावसरत के साथ। कोई आपको पढ़ के दे दे तो उससे आपको क्या मिल गया? आप अपने शौहर से कहें किसी और के ज़रिए मुझे कहलवा दो कि मुझे तुमसे बड़ा प्यार है और तुम मेरी अच्छी बीवी हो, बात बनती है? तो मुझे और आपको अपने दिल को खाली कर दें। जब ये मोहब्बत कायम होती है ना, तो इस रास्ते की मुश्किलात मुश्किल नहीं लगती। देखिए, गोश्त आपका भी मेरा भी, तो बिलाल का भी तो वही गोश्त था ना, चोट पड़ती थी ना, और सिर्फ बिलाल की बात ना करनी चाहिए। ऐसे ऐसे सहाबा की कहानियां आप पढ़ के देखिए, ये नायतों की तफसीर सुन ले जो मैंने अभी आपके सामने रखी, सूरह अनकबूत की पहली आयत, इसी तरह एक सूरह बकरा की एक आयत पे तो शायद सीडी आज भी बाहर होगी, बाद में आपको बताते हैं इंशाल्लाह, कि जिसमें अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान किया कि तुम जन्नत में चले जाओगे, अभी तक तुम्हारी आजमाइश नहीं हुई, तकलीफें नहीं आई, तुम पे परेशानियां नहीं आई, तुमने अभी मुझे साबित ही नहीं किया कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तो अभी ऐसी जन्नत में चले जाओगे। लेकिन इट्स ट्रू, जब एक बंदा अल्लाह के साथ बात करता है ना, तो उसको उसी बातचीत में पता चल जाता है मेरा ताल्लुक क्या है। मसला आप देखिए, बाज़ लोग कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, तो आप खुद क्यों नहीं करते? नहीं, अल्लाह हमारी नहीं सुनता, नऊज़ु बिल्लाह, जी नहीं, माजरत के साथ अल्लाह तो आपकी सुनता है, आप उसकी नहीं सुन रहे, क्योंकि अल्लाह ताला तो कुरान में क्या कहते हैं, आयत 183 है गालिबन सूरह बकरा की, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयूमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, तो कह दें कि मैं करीब हूँ और पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझको पुकारता है। लेकिन इनसे कहो जरा तुम भी तो मेरी बात को सुनो और कबूल करो, ताकि तुम फला पाओ। हम ये चाहते हैं अल्लाह ताला हमारी हर बात पे के ठीक है जी, ओके, और कुछ चाहिए ये भी दे दो, जैसे कोई मेन्यू ऑर्डर होता है ना, मेन्यू देते हो, ये भी ओके ओके, हम जो मांगे अल्लाह ताला फौरन हाजिर कर दे। तो अल्लाह ताला दिन में 5 बार पुकारे, तो हम एक दो बार भी चले जाएँ तो बड़ा एहसान है। या हय अलल सलाह और हय अलल फलाह की पुकार क्या, अल्लाह बुलाते आओ मैं तुम्हें कामयाब करूँ। पाकीज़ा ज़िंदगी के अंदर दूसरी चीज़ नमाज है, इंशाल्लाह हम इससे अगली नशिस्त में उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अपनी बात सोचें। ये बुनियादें हैं। आज मुसलमान क्यों परेशान है, कभी आपने सोचा? आज क्यों हर तरफ मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है, क्या हो गया है? कल तक तो अल्लाह ताला ने 313 को 1,000 के मुकाबले में फतह दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सारी जंगों में सिवाय गज़वे उहद में एक वक्ती भगदड़ मचने के किसी जंग में मुसलमान नाकाम ना हुए, और तबूक के मौके पे तो उंगलियां दांतों के नीचे दबी की दबी रह गईं कि अपने वक्त की सुपर पावर एक कमज़ोर इंसान कह लीजिए मादी असबाब के अतबार से, लेकिन ईमान की बुलंदियों पे फायज उसके सहाब साथियों को आता देखकर वापस ही नहीं आया। हिरकल की तरफ इशारा है, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनको पता, यानी मुसलमान पहले क्या थे आज क्या हो गया? आज वो रोब क्यों नहीं रहा जो उमर फारूक का रोब था, और वो जो कल मुसलमानों की धाक थी दिलों पे, और जो रोब था और जो मोहब्बत थी, वो आज क्यों नहीं दिखती? इसलिए कि ना मुसलमानों के दिल पाक रहे और ना जिंदगी पाक रहे। अगर सही वक्त की अजान है तो हम सुन लेते हैं, सुन ले जी, फिर इसको बंद कर लीजिए। तो याद रखिए कि जो ताल्लुक आपका अपने रब से होगा ना, वही ताल्लुक रब का आपसे भी होगा। हमें अपने ताल्लुकात को अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर खुशियाँ आएंगी। अल्लाह मुसलमानों की मदद करता है, लेकिन मशरूत, कंडीशनल, अज़कुरू नहीं अज़कुर को। हालांकि अल्लाह ताला को इस तरह कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो खाली है, उसका बंदों से क्या मुकाबला, लेकिन वो बराबरी पे लाके कह रहा है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें करूँगा, और तुम मेरे से नाराज़ हो, तुम ना शुक्री करते हो, तो जाओ फिर, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस करना है। फिर आप देखिए किसी के आगे अगर आप देखें, वमा कान अल्लाह लियुतलियकुम अलल गैब, साफ तौर पर बता दिया कि अल्लाह ताला नबी आपको गैब की हर बात से आगाह नहीं करता, इशारा दे दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब नहीं पता था। हाँ, जितना जब अल्लाह ने बताया पता लग गया। अपनी ही बीवी पे तोहमत लगी रही, 1 महीना तक इतनी कोल्ड वॉर चलती रही, दुखी भी रहे, परेशान रहे। आपको नहीं पता था कि बीबी आयशा बेगुनाह है, जब तक कि सूरत नूर की आयतें नाजिल ना हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बीसियों वाक़यात साबित करते हैं कि जब तक अल्लाह ने कोई बात खुद ना बताई, आपको नहीं पता चली। तो गैब नहीं, फिर क्या मुकाम था हमारे प्यारे नबी का? आज देखिए, ताल्लुक़ की जो दूसरी डोरी है ना, वो अल्लाह के साथ है और उसके रसूल के साथ है। तैयब ज़िंदगी का आगाज़ अगर अल्लाह के साथ होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात से काफ़ी बात समझ आ गई है, सोचने के नुक्ते मिल गए। मैंने ऐसे छोटी छोटी बातों से आपको बता दिया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी खूबसूरत करना चाहते हैं तो आपको अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ पैदा करना होगा। अब दूसरी सीढ़ी पे चलते हैं। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, और अल्लाह जिसको चाहता है अपने रसूलों में से चुन लेता है। थोड़ा सा इस पे ताल्लुक बिर रसूल पे बात कर लेते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? मैं बहुत ही डरते हुए आपसे अगर जिक्र कर दूं कि मुसलमानों में से अक्सरियत अल्लाह को खुश रखती है, कोशिश तो करती है, सुस्तियां हों, कुछ भी हों, लेकिन अक्सरियत का मसला रसूल को खुश रखना है। कोई बात करे कि ये है, कहते हैं कहाँ लिखा है? कुरान में? तो आप कहते हैं कुरान में नहीं है, हदीस में। फिर छोड़ दो, पता नहीं हदीसें किसने लिखी, बाद में लिखी, कब लिखी। सुन्नत को नहीं मानते। इसकी सबसे पहली दलील तो आपको कुरान पाक में मिल जाएगी। कहाँ पे? सूरत बकरा खोलते ही, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقوں کا تذکرہ شروع اس آیت سے ہوتا ہے قرآن پاک میں، ترتیب کے اعتبار سے۔ کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی لاتے ہیں، حالانکہ وہ ہیں کوئی نہیں ایمان والے۔ میرے لیے آپ سب کو زبانی یاد ہوگی آیت، رائٹ؟ شروع میں آتی ہے، آیت نمبر 7 ہے غالباً قرآن کی، 8 है या 7 है، चेक कर सकते हैं हम लोग। बहरहाल 8 नंबर आयत है जी। तो अब आप देखिए, 8 नंबर आयत में अल्लाह ने बता दिया कि मुनाफिक का मसला क्या है। अब आप नोट कीजिए, इस्लाम के 3 बुनियादी पिलर हैं। इस पर पूरी बुक भी हम एक पढ़ चुके हैं, असूल सलासा। 3 बुनियादी, और यही 3 सवाल है जिसका कब्र में सवाल होना है। मन रब्बू का, मन रसूलू का, मा दीनू का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा आपका ठीक ताल्लुक पाकीज़ा ज़िंदगी की दूसरी बुनियाद है। कैसे? आप देखिए कि मुनाफिक अल्लाह पे ईमान ला रहा है आमन्ना बिल्लाही कहकर, ठीक है, साथ ही क्या कहते हैं, वह बिल यौमिल आखिर, इसमें क्या हो गया, आखिरत पर ईमान। मिसिंग क्या है इसमें? आमन्ना बिर रसूल, शाबाश। मुनाफिक का सबसे बड़ा मसला, इशू, रोग रसूल की इत्तबा है। और मक्का में तो थे नहीं, मदीना में तो गिनती के मुनाफिक थे। हज़रत हुज़ैफ़ा के बकौल 70 मुनाफिकों के नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए थे उनको तबुक से वापसी पे। चलिए, 70 के उस वक़्त बता दिए, कोई इधर उधर से जमा कर लीजिए। मैं आपको मुख्तात से अंदाजे से कह दूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में मुनाफिकों की तादाद 100 से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उनके ऊपर कितनी बात हुई, पूरी सूरह मुनाफिकून, सूरह अहज़ाब, सूरह बकरा, सूरह तौबा मुनाफिकों के किस्सों से भरी हुई है। आज के दौर में हम मुसलमानों का क्या मामला है? देखिए, अब जो बातें कहूँगी ना, वो थोड़ी सी कड़वी होंगी। मैं कोशिश करूँगी मिठास से बात करूँ, ताकि आपको वो कड़वी गोली शहद में लिपटी हुई या लड्डू में लिपटी हुई लगे। लेकिन मैं आपको किसी एक चीज़ को सामने रख के नहीं, अमूमी तौर पे बात करूँगी कि आज के मुसलमान को देख कर कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग दिखता है, कहाँ दिखता है आज के मुसलमान को देख कर कि इसको रसूल से मोहब्बत है। अगर रसूल से मोहब्बत हो तो क्या रसूल के तरीकों से मोहब्बत नहीं होगी? रसूल के लाइफस्टाइल से मोहब्बत नहीं होगी? रसूल कैसे बच्चों को पालते थे, रसूल कैसे शादियां करते थे, रसूल का ज़िंदगी का मिशन क्या था, क्या जुम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग अपने आप को नबी सल्लम से मैच कर सकते हैं? चलिए थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं। आज के दौर में अगर नबी सल्लम आ जाए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और चंद नाम और ले लीजिए, वो कैसे लगेंगे देखने में? हाउ दे विल लुक लाइक? नबी सल्लम का घर हो इधर, शिकागो में घर है आपके नबी का, कैसा होगा भला? आपके नबी कारोबार करते हैं, क्या डीलिंग्स होंगी उनकी? एयरपोर्ट से एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जा रही हैं बीबी फातिमा और बीबी खदीजा, किस गेटअप में जाएंगी? कि नहीं नहीं यानी मैंने लोगों के ये मशवरे भी सुने हैं और अपनी आंखों से भी देखा है, उनकी ज़िंदगी के दो रूप हो जाते हैं, एक मस्जिदों का रूप, चलो ये इंडोर थिंग्स कोई बात नहीं, गाड़ी में जाके गाड़ी में आएंगे, उसमें हम वाकई वी वांट टू लुक लाइक बीबी आयशा, बीबी खदीजा, और हम नबी सल्लम की बीवियों और बेटियों जैसे लगना बुरा नहीं मानते, लेकिन जहाँ ज़रा मरूबियत शुरू होती है, एयरपोर्ट्स पे, डॉक्टर्स पे, मॉल्स में, मैंने लिटरली कई मुस्लिम ब्रॉट अप सिस्टर जो अपने मुल्कों में रहीं, अब शादी के बाद जहाँ मर्जी आ गई, मैंने उनसे सुना, कहते नहीं हम ये अपने इन कपड़ों में नहीं जा सकते पब्लिक प्लेसेस में, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि बस जगह तो वो लोग जो दूसरों की हिदायत के लिए किसी दीन के इदारे के साथ जुड़े भी होते हैं, एक ख़ास गेटअप में ही आप उनको हमेशा देखते हैं, एयरपोर्ट्स पे आप उनको भी देख के हैरान हो जाते हैं, ये कौन सा रंग है, ये कौन से कपड़े थे जो इधर आके उतर गए? अगर सच बताइए नबी सल्लम से मुझे और आपको मोहब्बत है, तो क्या मेरा हाल उस प्यारे सहाबी की तरह है कि जो नबी से पूछता है? क्या आप ये बताइए कि अगर मैं जन्नत में चला भी गया,
बेटा ये लो,
जज़ाकल्लाह जी, आपने कहा है तो मैं ले लेती हूँ, बता नहीं इसमें
आप लेंगी
तो
देखें अच्छा लगता
था, जी शुक्रिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में सहाबा को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। एक सहाबी और आपके पास आए और चेहरे पे उदासी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी उदासी भी कुछ इतनी थोड़ी नहीं कि आप पहचान ना सकें, आप बहुत ज़्यादा नफ्सशनास थे, कहने लगे दोस्त क्या हुआ आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बैठे बैठे ख्याल आ गया, उसने उदास कर दिया, फिक्र लग गई। क्या फिक्र लगी है भाई मेरे दोस्त आपको, अब ज़रा आप और मैं भी थोड़ा सा अपना भी सोच लें, उनको क्या फिक्र होगी, घर कैसे बनाऊँ, बेटी की शादी कैसे करूँ, हमारे अमूमन ऐसे ही फिक्र है ना छोटे छोटे, आप ज़रा सोचिए उनका फिक्र क्या है। कहने लगे आज मैं बैठा हुआ था तो मेरे दिल में ख्याल आ गया कि मैं अगर जन्नत में चला भी गया, उम्मीद तो होती है ना मोमिन को, तो मैं तो जन्नत के किसी बहुत नीचे के दर्जे में होऊंगा, जहाँ एक आम इकोनॉमी क्लास में दूसरे रहते हैं, और आप तो माशाल्लाह आला जन्नतों में होंगे, आज की ज़ुबान में कहें आप तो फर्स्ट क्लास में होंगे, मैं कि इकोनॉमी में होंगे। दुनिया में मेरा आपके साथ मोहब्बत का ये हाल है कि मैं अपने घर में होता हूँ ना तो एकदम मेरे दिल में हूक उठती है, मुझे आप याद आ जाते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उसके साथ यही होता है ना, बार बार उधर ख्याल जाता है, तो मैं फ़ौरन अपने घर से निकलता हूँ, मस्जिद नबी में आता हूँ, मैं आपको देखता हूँ, कभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं बस आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करके चला जाता हूँ, कभी मैं बाज़ार में अपने काम में होता हूँ, मुझे एकदम आपकी मोहब्बत याद आती है, और मैं फिर उसी तरह करता हूँ। जो ख्याल आज मुझे दुखी कर गया वो ये है कि जन्नत में चला भी गया, वहाँ जब आप याद आएंगे तो फिर क्या होगा? बात समझ गए? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया मेरे दोस्त गम ना करो, अल मर उमा मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की होगी। और कुरान में तो आप पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सूरत फातिहा में 17 बार पढ़ते हैं दिन में, इनाम वाले लोगों का रास्ता। और आगे सूरत निसा में कह दिया वह मैं युति अल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा फिर वो है उन लोगों में जिन पे अल्लाह ने इनाम किए, नबियों में और सिद्दीकों में और शोहदा में और सालेहीन में। तो क्या पता चला कि नबी से अगर मोहब्बत है तो हकीकत में नबी सल्लम से मिलने को दिल चाहता है। अब इस वक्त मैं, मुझे भी आप कहेंगे तो मैं भी वही कहूँगी जो मैं पूछूँगी आपसे, तो आप कहेंगे कितना प्यार है अपने नबी से, बहुत ज़्यादा। कब आखिरी बार हम इस बात पे रो पड़े कि पता नहीं जन्नत में नबी सल्लम का दीदार होगा कि नहीं, कब आखिरी बार इस ख्याल ने हमें दुखी किया कि हौज़े कौसर का पानी नबी सल्लम के दस्ते मुबारक से पीना नसीब होगा कि नहीं, कब ये ख्याल आया? और कब ये हमें आखिरी बार ख्याल आया कि क़यामत के दिन अगर मेरे बुरे करतूत नबी सल्लम के सामने खुल गए तो क्या रुसवाई होगी? आपने शेर सुना होगा अल्लामा इकबाल का, फारसी का शेर है लेकिन उसका उर्दू में मफहूम क्या है, कहते हैं कि अल्लाह तू गनी है, तुझे क्या ज़रूरत है किसी का हिसाब ले, यानी तू क़यामत के दिन मेरा हिसाब ना लेना, यानी मेरा ये पटारा ना खोलना आमाल का। लेकिन अगर तूने वाकई मेरा हिसाब लेना है, ज़रूरी लेना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा के लेना, मुझे उनके सामने रुसवा ना करना। इंसान कहता है ना कमरे में बंद करके दो लगा भी लो, किसी के सामने ना मैं शर्मसार करना। तो आज आप पर मैं देखे, क्या वाकई नबी सल्लम से मोहब्बत है हमें? हमारा दिल पाक है आपकी मोहब्बत में? देखिए मोहब्बत बोलती है, मोहब्बत इजहार चाहती है, मोहब्बत फातहे आलम। ये मोहब्बत के तो सारे खेल थे कि सहाबा ने नमाज के दौरान किबला बदल लिया। सयकूलु सुफहाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। उनको ये परवाह नहीं रही कि लोग क्या बातें करेंगे, कि ये इनको क्या हो गया बैठे बैठे इन्होंने अपने किबले बदल लिए। नमाज की हालत में देखिए, ये किबला है ना इधर मस्जिद का, तो इधर से मुंह करके इधर कर लिया कि औरतें आगे और मर्द पीछे चले गए, एक बंदा छूछा नहीं करता। हमारे होते तो मस्जिद ही दो हिस्सों में बढ़ चुकी होती, इख्तलाफात फूट पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। तो नबी से मोहब्बत भी ज़िंदगी को पाकीज़ा करती है, ये लम्हा लम्हा आती है, आप इसको महसूस करें। मैं अपनी आपको कहानी सुना देती हूँ कि मुझे अल्लाह के नबी से, जिसको कहना चाहिए दिल की मोहब्बत, कब महसूस हुई। मैं भी आम लोगों की तरह ये कह सकती हूँ बचपन से प्यार था, शुरू से बड़ा प्यार है अल्लाह के नबी से, लेकिन सच बताऊँ वो सिर्फ एक हैवला सा होता है, तकद्दस का, रिस्पेक्ट का एक आला मुकाम, बस एक तकद्दस। वो जो मोहब्बत के एक गुदाज और नरम जज्बे होते हैं वो कोई नहीं होते। वो सबसे पहले मैंने उस वक्त महसूस किए थे जब मैंने सबसे पहले अर रही को मखतूम किताब पढ़ी और फिर पढ़ाई। सीरत की किताब है, शराब नचड़ी हुई, जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा है। वो बुक मैंने खुद पढ़ी पहले, कॉलेज की लाइफ थी, किसी तरह हाथ लगी तो पढ़ ली, बस ख़त्म करने को दिल नहीं करता था। उसको पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि मेरा नबी एक इंसान था, उनको भी दुख आए, उन्होंने इस दीन को फैलाने में भूख सही, प्यास सही, उनके पाँव की जूतियों में खून छिपका ताइफ की गलियों में। आज मुल्क मक्का से ताइफ का सफ़र 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, 2 से कम नहीं लगेंगे। गाड़ियों में हाईवेज तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, मैं खुद जा चुकी हूँ, तकरीबन 2 घंटे से ऊपर लग ही जाते हैं ताइफ जाते हुए। तन तन्हा से मुराद ये कि आप और आपके साथ सिर्फ आपका ग़ुलाम जैद, जिसको बेटा बनाया था, मक्का से ताइफ पैदल गए थे। हम तो इमेजिन नहीं कर सकते, मैं यहाँ से गाड़ी तक पैदल जाना हो तो हम कहते इधर करीब ही ले आओ। इस दीन को फैलाने के लिए उस नबी ने कहाँ कहाँ चोटें खाई। तो आज मेरा और आपका मिशन क्या है? आज मैं और आप अपने आप को चेक करें, अगर अल्लाह के नबी भी आज हमारी तरह खुद गर्ज बन के जीते, नमाजें पढ़ते, पढ़ने का सवाब है, नफिल पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, रोज़े रखते, भाई बहुत नेक है क्योंकि सवाब मिलेगा। ये बहुत आसान है, याद रखिए। जितनी देर से आपसे बात कर रही हूँ और जितनी देर आप लोगों ने तैयारी में लगाई और जहाँ से आए और गए, इतनी देर में तो मेरे हाले 50 नफल पढ़ चुके होते हम अभी तक। लेकिन असल मुश्किल क्या है कि नबी का तरीका, और वो क्या था? कौम फानजर। इस पे अपने दिल को चेक करें। पाकीज़ा ज़िंदगी की खूबसूरत बुनियाद यह है कि आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते पे लगा दें। पूरे यकीन, कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ कहूँगी, आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ फितने, आजमाइशें, परेशानियाँ मुँह खोल के दिख रही हैं, वो लोग आज भी सुख और चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं और आराम से सोते हैं जो अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के रास्ते में लगा चुके हैं। ये नहीं कि अब तस्बीह पकड़ के और मुसल्ला पकड़ के बैठने को अल्लाह का रास्ता के, लेकिन ज़िंदगी वो जिए कि जो दूसरों के रास्ते हमवार करते हैं। और अगर आज मैंने और आपने ये ना किया तो हमारी नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अल्लाह के नबी मक्का के 13 साल कैसे जिए? मैं आपको छोटा सा असाइनमेंट देती हूँ, घर जाएं, अगली बात सुनने से पहले कुछ उसके ऊपर मवाद जमा कर लें। 13 साल मेरे नबी ने इस दीन को हम तक पहुंचाने में कितनी कोशिशें की। अगर अपनी नमाजें थी हिरा में बैठे पढ़ ही रहे थे ना। देखिए, आपने कभी भी सीरत की कोई बुक पढ़ी होगी ना, तो कहते हैं नबूवत से पहले ही नबी सल्लम गारे हिरा में जाने लग गए। सुना हुआ जुमला? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको सत्तू दे देती थी और खाना बांध देती थी, फिर आप दो दो तीन तीन दिन वहाँ रहते। सुना मैंने आपने? आप किसी किताब में ये नहीं पढ़ेंगे कि नबूवत की जिम्मेदारियाँ डलने के बाद, कौम फानज़िर का हुक्म नाजिल होने के बाद आप फिर गारे हिरा में जाके बैठते थे। वो प्रिपरेशन थी अल्लाह आपके दिल को इस वही के बोझ को सहारने के लिए तैयार कर रहे थे। तब आपका अपना तज़किया हो रहा था, आपके दिल के बर्तन में हिकमत और ईमान डल रही थी, और ये ज़रूरी होती है। इसके लिए आपको भी दावत दूंगी, अगर आप और मैं अपने दिल के बर्तन में इल्म का पानी नहीं डालेंगे तो मारफत बिल्ला की ग़ज़ा कभी नहीं मिलेगी। नबी सल्लम हिरा में जाकर जो काम कराए, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे 40 रातों के लिए बुलाकर वो काम करा लिया गया। दिल पाक होता है तन्हाई में, फारिग करके खुद को हनीफियत के तौर पे फोकस्ड होते हुए कुछ वक्त अल्लाह से बातें करने के लिए रखना, और इसका सफ़र इल्म से शुरू होता है। जब आपके अपने अंदर नहीं डलता, दूसरों को नहीं देंगे, जो डलेगा वही देंगे कच्चा पक्का। पहले लेना पड़ता है फिर देते हैं। पहले आपकी अपनी ट्रिमिंग होती है, फिर दूसरों की करेंगे आप। आपका तज़किया नहीं हुआ दूसरों का नहीं होगा, आपकी तरबियत नहीं हुई दूसरों की कोई नहीं होगी। तो ज़रूरत इस बात की कि आज मैं और आप इस रंग पे नबी के साथ अपने आप को मैच करें। अभी तक जितनी बातें की हैं ना, इसको सुनकर आप कहते हैं हम क्या करें। आज जितनी बात की है ना, इसे लंबी मैं करती नहीं हूँ। हाँ, अब इसके बाद अगर आप चाहेंगे, टाइम तो मुझे काफ़ी दिख रहा है अभी, लेकिन आपका कोई सवाल जवाब होगा तो इंशाल्लाह वी कैन टेक कर लेस। लेकिन आज आपको मैंने तकरीबन 3 नुक्ते समझाने की कोशिश की है। पाकीज़ा ज़िंदगी की बुनियाद अल्लाह से मार्फत, मोहब्बत, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, उसके तकाज़ों को समझना, उस पर गौर व फिक्र करना, उसके साथ अपने आप को मैच करना। फिर दूसरी चीज़ हमने देखी है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक़। अतीउल्लाह का है, अतीउर रसूल का साथ है कि नहीं, इत्तबाए रसूल है कि इताते रसूल है या नाफरमानी है, समय न व अताना है या समय न व हसीना है। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नबी से मैच करें और फितरी तौर पे अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें डालते जाएं जो अल्लाह के नबी की थी, और जो आप नहीं कर सकते वो करने का मुझे तो हक़ ही नहीं है। और तीसरी चीज़ जो हम लेकर जिस पे बात पूरी करें, जिससे इंशाल्लाह अगली चीज़ में हम जाएंगे, वो क्या है कि दीन के लिए अपने आप को किस तरह वक्फ करें। लोग कहते हैं तबलीगी जमात को ज्वाइन कर लेंगे तो हम दीनदार हो जाएंगे, जमात इस्लामी का फॉर्म फिल करेंगे तो दीनदार हो जाएंगे। मैं इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को नहीं जानती, लेकिन आपको एक बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ, आप जिस लेवल पे भी हैं इस वक्त, मुझे नहीं पता सुनने वाला कौन कहाँ से आता है, किस लेवल का, आई डोंट नो, लेकिन मैं तो अपने ऊपर लेके बात करूँगी। क्योंकि हम सब एक ही जैसे इंसान हैं। जब तक आप इल्म नहीं लेंगे कुरान और सुन्नत का, तब तक आप बाकी स्टेप्स पे नहीं जा सकते। जैसे ऊपर आते हुए सीढ़ियाँ थी ना, कुछ लोग लिफ्ट में आए होंगे, जो सीढ़ी से आए, पहली सीढ़ी ना पकड़ें, पहली सीढ़ी पे पाँव ना रखें तो दूसरी पे रख सकते हैं, तो दूसरी को स्किप कर दें तो तीसरी पे आएंगे। ये सीढ़ियाँ हैं। आज उम्मत मुस्लिमा के जो प्रॉब्लम्स और जो मुश्किलात है ना, उसका इलाज क्या है? टोटल क्लीन अप, हर लेवल पर इल्म को आम किया जाए, दीन सीखना। कितनी हैरत की बात है कि कुरान की तिलावत चलती है, और बिलीव में 100-100 बंदा भी होता है, 100 बंदा तो नहीं, यानी 100-100 सिस्टर्स भी होती हैं उस महफिल में, और बाद में मैं पूछती हूँ कौन सी सूरत थी, कौन सी आयत थी, क्या कहा गया। चलिए कोई बातें जो आपको उर्दू से रिलेटेड मिली, जैसे बहुत सारे लफ्ज़ हैं जन्नत लफ्ज़ उर्दू में, कुछ गई, यकीन करें मेरे दिल की कोई कह लीजिए कि 100 टुकड़े हो जाते हैं जब मुझे 100 में से कोई एक आधी दो हाथ मिलते हैं, और बाद में पता चलता है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हैं, कोई लफ्ज़ी तर्जमा सीख रही हैं, क्लास ले रही हैं, दे रही हैं, इल्ला माशाल्लाह। पब्लिक दरसों में ऐसे ही होता, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी इंसल्ट हो गई। जैसे आप देखिए मैं बोल रही हूँ ना इस वक्त, तो आप कितने सुकून से सुन रहे हैं। अगर इस वक्त आप बोलने लग जाएं, फ़ोन उठा लें अपने बीच में करें, तो मुझे डिसरिस्पेक्ट का एहसास होगा कि नहीं होगा? तो मैं कौन हूँ? कमज़ोर इंसान, गुनाहगार, आप ही जैसी हूँ ना। मेरी बात पे आपके कान इतने खड़े हैं कि आप और भी आधा घंटा बैठ सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन कुरान की तिलावत हो तो बातें। बल्कि मैं एक जगह थी तो तिलावत में तब चलवाती हूँ जब पहले कहती हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग सेटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो तिलावत चलाऊँ। ऐसे तो मैंने भी नहीं आके बोलना शुरू किया ना, तो मैं अपने रब की बात क्यों ऐसे चलाऊँ? फिर हम कोई नशीद चला देते हैं, कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज़ चलाते हैं, अल्लाह के नाम चल रहे थे, असमाल हुस्ना, और हर नाम के साथ मेरे जहन में वो सारे मंजर आ रहे थे जो हमने इस सीरीज़ को जब पढ़ा तो एक एक नाम पर गौर व फिक्र में थे। बिलीव मी सिस्टर्स, ऐसे सोचती हैं शायद ये खाना पूरी हो रही है, फ़ोन पे बातें, चींचा, यानी जिस मकसद के लिए वो चलाए जाते हैं ना कि ज़रा लोग सेटल डाउन हो जाएं, कि एक आवाज़ आनी शुरू होगी, अब खामोश होकर सुने, वो चीज़ नहीं मिलती। और औरतें सोचती अच्छा ये जब तक चल रहे हैं अब तब तक तो हम बातें कर ही सकते हैं, मेरा दिल करे मैं दर्स ही ना दूँ। वल्लाह ऐसा एक दफ़ा हुआ किसी जगह, मुसलसल सिस्टर्स बोल रही थी, बातें कर रही थी दर्स के दौरान, असमाल हुस्ना प्ले हो रहे थे उसके दौरान, और बाद में मैंने पूछा कि आपने क्या सुना, क्या, हाँ अल्लाह के नाम है, यानी लोगों का कोई ताल्लुक नहीं मुझे बनता हुआ दिखा। तो आप और मैं आज एक नियत करके जाएं, यहाँ से उठते हुए हम चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो, प्योर हो, तैयब हो, हमारी औलादों की, हमारी नस्लों की, तो उसके लिए आप अपने बच्चों को साथ लेकर अल्लाह के दीन के सीखने का अहतमाम करें हर लेवल पे, जिसको मैं कहना चाहिए कि रूट्स होती है ना, उसको इस वक्त इल्म के पानी की ज़रूरत है। कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटीस में हैं, कोई अभी 8-10 साल की उम्र के बच्चे हैं, आप हाउसवाइफ्स हैं। मैं औरतों से पूछती आप क्या करती हैं, कहती कुछ नहीं करते, और कोई चेहरे पे मलाल नहीं मुतमईन, क्या करते हैं जी, हाउसवाइफ है। यानी आज हम ये सोचते हैं कि हम घर में खाना पकाते हैं और 3 दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी हैवी मील बच्चों को खिला रहे हैं और उनकी पसंद के पिज़्ज़ाज़ और मैकडोनल्ड्स और सब मंगा के दे रहे हैं, तो हम बड़ी अच्छी माएँ हैं। बहुत कम सिस्टर्स को मैंने ये मलाल समझते हैं, रिग्रेट देखा है उनके कि हाँ वक्त नहीं मिल रहा, कोशिश पूरी कर रही हूँ लेकिन अभी तक कुरान नहीं सीख सकी। तो आज ये नियत कीजिए, ये जो बात मैंने की ना, ये देख लें आप भी, अगर आप इसको खोल मैं दिखा दूँ तो सिर्फ कुरान की तिलावत आयत है, आयत नंबर आल इमरान 179। मैंने हल्की सी आपसे वजाहत की, कोई मैं डेप्थ में तो गई भी नहीं, जाना मकसद भी नहीं था। आप कुरान तफसीर से सीखें, 5 हक हैं कुरान के, उसको एक एक लफ्ज़ के साथ सीखना, एक एक चीज़ में लेके चलना, और आप उसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो फिर आपको अल्लाह की मर्ज़ी समझ आएगी। इसके लिए तरीक़ाकार क्या हो सकता है, इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी, लेकिन मेरा आप दिल कर रहा है कि आप लोग शेयर करें। कोई सवाल है? जो सुना आज क्या सीखा? चंद सिस्टर्स जो अपनी खुशी से हाथ खड़ा कर लें, माइक उधर भेजूंगी तो मुझे पता है वो जिसके आगे माइक आता है वो परेशान हो जाता है दूसरे को, तो ऐसी दिल की बातें करें। एक एक जुमले में जी। आप सिस्टर, आप
पाकिजा
कभी पहले भी मिली हैं क्या? आज फर्स्ट टाइम मिली
फर्स्ट
हैं?
टाइम।
ओके, शायद आप शुरू में अकेली थी तो आपकी शक्ल दिन में रह गई। जी प्लीज गो हैड, क्या सीखा आज आपने?
बस पाकीज़ा ज़िंदगी अपनी गुजारनी है, अल्लाह पाक को यानी उसकी अहकामों की पाबंदी करने का है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करने का है।
ठीक, यानी आपको ज़्यादा यही इशारा मिला कि अल्लाह के नबी की इत्तेबा का। ठीक है, और कोई सिस्टर? कोई बात जी, आप प्लीज़ थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे। जी, जो आप लोग, आपका सवाल मैं दोहरा देती हूँ क्योंकि दूर होने की मेरे मैंने अपने पास रखा था। जी, जो सवाल आपका ये है कि जब हम कोई दुआ करते हैं तो वो कबूल होती भी नहीं दिखती बज़ाहर, तो उसको फिर क्या करें, करते रहें कि ना करें? देखिए, इंशाल्लाह इसी सीरीज़ में एक पूरा टॉपिक भी हम लेंगे। अगर आप ये दो दिन और हमारे साथ गुजार लें, आज भी दो दर, अभी एक शाम का दर्स है। अब आप कहेंगे वो दूर है या करीब है, मुझे दूर नहीं लगता क्योंकि मैं अटलांटा से आई हूँ इस वक्त, तो उसमें और कल दो दर्स फिर इधर है, जहाँ भी है आप लोग उसका एड्रेस बाद में लेकर जाएं तो इंशाल्लाह बात होगी। लेकिन आपने जो कि ये सवाल किया तो आपका हक बनता है कि जवाब दूँ आपको। तो देखिए, जो भी दुआ हम करते हैं ना, उसके साथ तीन में से एक मामला ज़रूर होता है। एक क्या है? जो मांगा वो मिल गया। मैंने पानी मांगा, आपने मुझे ला के दे दिया, मांगा भी नहीं तो दे दिया। ये हमारी दुआओं के साथ होता है। कभी हम मांगते हैं कोई चीज़ और कभी अभी दिल में ही ख्याल आता है तो वो चीज़ मिल जाती है ना? और हम ना शुक्र है फिर क्या कहते हैं, हाय कुछ और मांगा होता। शुक्र मांगो कि अल्लाह ने दिया तो उसको कबूल किया आपने, है ठीक है। ये सबसे हल्का दर्जा है। हमें लगता है जो मांगा मिल गया ये बहुत बड़ा दर्जा है, ये बिल्कुल हल्का दर्जा होता है। दूसरा लेवल क्या होता है? फौरन नहीं मिलता, अल्लाह ताला उसकी वजह से कोई मुश्किल जो हम पे आने वाली थी वो रोक लेते हैं। छोटी सी मिसाल अक्सर मैं देती हूँ कि एक यंग बच्चा है, वो कहता है मुझे गाड़ी मिल जाए, और गाड़ी भी मिल जाए फरारी और पता नहीं कौन कौन सी। अच्छा, अब वो गाड़ी लेता है, गाड़ी अगर उसको मिल जाए तो साथ ही उसके नसीब में ये है कि उसका दो दिन बाद एक इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होगा कि जिसमें उसकी टांग की हड्डी टूट जाएगी। अब मुझे बताइए, क्या वो गाड़ी मिलना उसके लिए खैर है? नहीं है ना। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसको गाड़ी नहीं देते लेकिन उसकी टांग की हड्डी टूटने से उसको बचा लेते हैं। यानी कोई आने वाली मुसीबत उससे अल्लाह ताला हटा देते हैं। ये बेहतर है कि पहली बेहतर थी, गाड़ी मिले और टांग टूटे, ये बेहतर है या गाड़ी ना मिले और टांग सलामत रहे? ठीक है ना, ये उससे बेहतर है। तीसरी सूरत क्या है कि ना तो दुनिया में कोई मुश्किल टली ना चीज़ मिली। क़यामत के दिन जब बंदा परेशान होगा, और बाज़ दफ़ा था एक नेकी की कमी की वजह से एक बंदा मैदान हशर में घूम फिर रहा होगा और कोई बंदा उसको एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा, तब अल्लाह सुब्हान तआला फरिश्तों से कहेंगे कि वो गठरी लेकर आओ, वो जो भी इसके लिए रखा हुआ, तो कोई गठड़ सा होगा। अब क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, इसको हम बस इमेजिन ही कर सकते हैं। और उसको कहा जाएगा कि ये अपने नेकियों के दफ्तर में रखो, तो वो सोचेगा कि ये क्या मजाक है, इसमें क्या होगा। और जब वो उस गठड़ी को रखेंगे तो उसके साथ ही उसका नेकियों का पलड़ा झुक के भारी हो जाएगा और गुनाहों का हल्का हो जाएगा, उसको जन्नत में जाने की इजाज़त मिल जाएगी। तो वो पूछेगा, अल्लाह ताला ये क्या किया आज आपने एहसान मुझ पे? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये एहसान नहीं है, ये आपकी वो दुआएं हैं जो आप ज़िंदगी भर मांगते थे और कबूल नहीं हुई, मैंने इसलिए संभाल के रखी हुई थी कि आज आप पर ये मुश्किल वक्त आने वाला है, तो मैंने उन दुआओं को आज यहाँ कैश करवा दिया। सच बताइए ये अच्छी हैं कि वो दुआ मांगनी छोड़े ना कभी। आप अपने जैसे इंसानों से कुछ मांगें और वो ना दें तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है ना? या तो लगेगा ये कंजूस है, या लगेगा ये मजबूर है, या सख्त दिल है। इंसान इंसान से मांगे और कोई ना दे तो बुरा लगता है। तो क्या आप सोचते हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हम हो और नऊज़ुबिल्लाह, सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, सिर्फ अपनी बात समझने के लिए अल्लाह ताला हमसे शर्मिंदा हो, छुपते फिरें? जैसे आपने किसी को कुछ कहा और वो ना दे ना, तो फिर 1 साल 6 महीने बाद जब सामना होता है ना तो लोग छुपते हैं। काम कहा था हमने नहीं किया, बात कही थी मानी नहीं, है ना? अब आप बताइए कि अल्लाह ताला कयामत के दिन नौज़ बिल्ला हम जैसों से शर्मिंदा होंगे, ओ प्लीज़ सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की। क्या आप तसव्वुर भी कर सकते हैं इसका? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह हर दुआ सुनते हैं। फल यस्त जीबुली वलियो मिनो भी, मांगते रहें, यकीन रखें, अल्लाह ताला आपके हक में उसको किसी न किसी तरह लगाएगा। दुआ कबूल होती भी नहीं दिख रही ना, फिर भी करें, फिर भी फ़ायदा। बस दुआओं से हिदायत मिल जाती। आप गाड़ी मांग रहे थे, आपको गाड़ी नहीं मिली, अच्छा उस्ताद मिल गया आपकी उस दुआ के नतीजे में, जिसने आपको ऐसे रास्ते पे लगा दिया कि आप जो गाड़ियां हैं उनसे भी बेनियाज हो गए। बात समझ गया ना? तो दुआएं रंग बदल के भी लगती हैं। कभी आप अपने लिए कुछ दुआ मांग रहे होते हैं, वो आपके बच्चे को लग जाती है, कभी आपके भाई को लग जाती है आपकी दुआ। आपको ये पता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप चाहें तो। ओ ये एक सीढ़ी है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा, बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए बाहर हैं, क्योंकि ये लोग जितनी भी अवेलेबल कर सकते हैं सफ़र में, दिन रात की मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें मैंने देखी हैं आपके लिए आई हैं। ये सीडी सुनने के काबिल है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ये मुझे पता है सारी माओ ने ले लेनी है और बच्चों को जाके तंग करना है, लेकिन बेसिकली ये लेक्चर मैंने लंदन में दिया था, मदर डॉटर सेशन था, यंग बच्चों के साथ माँ बाप के ताल्लुकात के बारे में। इसी तरह एक ये सीडी, सिर्फ 2 टॉपिक ही आए हैं आज, चेक कर लिए आपने? एक आधा शायद इधर होगा, कुरान मेरे दिल की बहार। ये वो लेक्चर है कि जिसको कई लोगों से ये हासिल है, एक कहले सबूत कि इस लेक्चर को बदल कर दिल बदला था। बहुत ही लाइट सा लेक्चर है। इसी तरह और दो, ये देखिए, ये सारा चीज़ें ना, ये आपको क्या करेंगी, जो आज हमने बात सुनी है ना, अल्लाह से जोड़ने का तजरिया और रसूल से और कुरान और इल्म की मोहब्बत है। ये एक ख़जाना, इस एक USB ड्राइव है, इसके अंदर पूरे कुरान का तर्जुमा और तफसीर, जिसको आप कह लें कि 1 महीने में जो हम कोर्स करते हैं रमज़ान में दौरा कुरान, इसमें मौजूद है। प्लस इसमें 30 पारे की लफ्ज़ ब लफ्ज़ तफसीर है, और उसके अंदर फिर एक्टिविटीज़, और मुझे ये लोग बता रहे थे कि आप, यानी USB 8 GB की USB है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, आप एक CD लेते हैं ना, आप एक से ज़्यादा ना लीजिएगा, हर एक आपको एक ही बहुत है। आप जाके इसको अपने कंप्यूटर में डालें, आजकल बच्चियों को तो सब पता है, माओ को भी अब काफ़ी हद तक पता लग गया है, इस USB को अपने लैपटॉप में डालें, घर में 10 कंप्यूटर हैं, बारी बारी एक एक में डालें, इसका फोल्डर खुलेगा, उसमें वो सब ऑडियो सेव है। यानी ये अगर आप देखें तो मेरे लिए कोई 100 घंटे की CD होगी, सब उर्दू में, एक एक लेक्चर उर्दू में होगा, मे भी कोई इंग्लिश की छोटी बड़ी चीज़ हो। अब आप क्या करेंगे कि वो आपके कंप्यूटर पे सेव हो गया, फ़ोन पे कर लें, आईपैड पे कर लें, आईपॉड पे कर लें, आप जाके पाकिस्तान में उसकी सीढ़ियाँ बना के जो करें, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरह से? अब आप अपने रखी, दोस्त के घर गए, क्या हाल है, चलो चाय बनाओ, अपना लैपटॉप मुझे दो, क्या करेंगे आप उसमें डालें, यानी इसका कुछ बिगड़ना नहीं है, बल्कि मज़े की बात यह कि आप माशाल्लाह जो यहाँ बाहर के मुल्कों में ख़ासतौर पे जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें आप वो जो USB ड्राइव होती है ना उसमें लगा दें, तो आपके CD के प्लेयर के साथ चलती है। यकीन करें, किसी जिसने भी ये ख़रीदी उसने कहा कि ये एक ट्रेयर है जो मेरे हाथ आ गए। लोग इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, ये एक ले जाते हैं, इसको 100-100 कापियाँ कर, आपको पूरी इजाज़त है। ये बाहर पता होगा, वो हदिया तो इसका कुछ भी नहीं है, ये कह लें कि ये जो ख़जाने हैं उसके आगे तो कुछ नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये प्रोडक्ट है, बनता है। और ये स्कूल हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नूरुल कुरान, हमने कभी अपने तारुफ दिए नहीं, मेरा ख्याल है लोगों को पता ही होता है, जो बात सुनी है वही तारुफ है, लेकिन ये कि नूरुल कुरान एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम कुरान और सुन्नत का नॉलेज आम करते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, स्क्रीन आपके नसीब में आज नहीं थी, किसी ना किसी जगह अगर अवेलेबल हो गई तो आपको वेबसाइट भी दिखा देंगे। हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, नूरुल कुरान वेबसाइट भी लिखी हुई है, व्हाट्सएप क्लासेस हैं, आप सब, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने अपने गेस्ट लिस्ट में नाम लिखा होगा, सब ने लिखा है, आप लोग अपना नाम दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको उसके अंदर लेक्चर्स भेजा करेंगे, ये डिटेल्स बाद की बात है। लेकिन यह है कि ये सब जितना भी प्रोडक्ट है इसकी मनी दोबारा इसी में रेज होती है जो, और ये ज़ाहिर है कि आप इसकी कीमत दे ही नहीं सकते, बात सदका जारी है, बहुत से लोग एक सीडी लेकर $20 भी डाल देते हैं, लेकिन आप जो भी अपने हिसाब से जहाँ लिखी है, मुझे नहीं पता वल्लाह ही, अगर लिखी होगी तो ठीक है, लेकिन इसकी कीमत उस तरह की नहीं है कि आप एक एक आना पाई गिन के ले दें, ये एक प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर आपके, और ये सारी चीज़ें दोबारा लगती हैं। माशाल्लाह अटलांटा में हमारा ऑन साइट स्कूल इधर चल रहा है अभी, और नॉर्वे में है, वहाँ बच्चों का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसके लिए ये सदका जारिया प्रोजेक्ट, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे, और सारे अगर आज ही चलेंगे इन चीज़ें तो बाकी जगह ठीक है नहीं होंगी, कोई बात नहीं, ये कुरातुलैन प्रोजेक्ट है, बच्चों का एक स्कूल बनवा रहे हैं वहाँ, तो उसकी बिल्डिंग के सिलसिले में इस कैलेंडर की सारी मनी जो है ये नॉर्वे के स्कूल को जा रही है। और ये कैलेंडर क्या है, ये जिन लोगों तक पिछले साल के पहुँचे थे उनको तो पता ही है, ये एक हैबिट कैलेंडर है जिसमें अगर आप देखेंगे तो पूरे हर महीने का एक पूरा कैलेंडर है और ऊपर उसका थीम है, और एक आयत लिखी है, हर दिन कोई ना कोई अच्छी बात है, ये बच्चों हर बच्चे का एक होना होता है, घर में जाके आप उसके रूम में लगाएं आपका भी है, 5 नमाजों का चेक मार्क, सुबह शाम की दुआएं हैं, इस साल का थोड़ा सा फ़र्क है जो मैं पिछले साल का था उसकी मेमोरी से आपको बता रही हूँ, पूरे महीने की एक दुआ है, आप पूरा महीना इसको देखते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं उनको भी याद होती है, फिर पीर और जुमेरात के रोज़ों का चेक मार्क है कि आपने रखा है तो यस कर दे, नहीं रखा, यानी बच्चों को घर वालों को साथ जोड़ने का एक तरीका है, और हर तरह का थीम डिफरेंट, हर महीने का अलग डिफरेंट थीम होता है, ये आप देख सकते हैं। अब ये बहुत थोड़े से रह गए, ये हज़ारों में आए थे और चंद दिनों में चले जाते हैं, और इसके पीछे इसके ऊपर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी वेबसाइट्स हैं हमारी और भी हैं, लेकिन आप एक वेब ही पहुंच जाएंगे तो दूसरी मिल जाएंगी, हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारे स्कूल हैं, क्या सब कुछ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिल जाएगी, और आजकल एक दो वेबसाइट और भी लॉन्च हो रही हैं, आप मतलब जिसको इंटरेस्ट होगा वो इसको देखेगा, तो इसमें भी इन्होंने कुछ मतलब मुझे लगता है कि जितने भेजे हैं उस हिसाब से थोड़े से ही हैं इधर, तो आप लोग ले सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आप सबसे शेयर करूंगी इस अपने ट्रिप के नाते से, वैसे तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ सफ़र जारी ही रहेगा हमारा, लेकिन ये जब प्योर लाइफ का हमने टॉपिक सोचा था तो हमने इस कार्ड को जहन में रखा था, आज चूंकि शुरू में भगदड़ ही इतनी मच गई, वरना ये कार्ड शुरू होने से पहले अगर आपके हाथ में होता और अगर अभी आप लोग यकीन के साथ ले के कर सकते हैं तो मैं पहली दुआ भी कराने को तैयार हूँ, क्योंकि 5 तक का टाइम था, 4 टाइम अभी है हमारे पास, 20-15 20 मिनट, लेकिन ये कार्ड जो है इसका नाम दूर से तो आप नहीं पढ़ पा रहे ना, एक जो बहुत बड़ी कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा नासूर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को लगा हुआ है वो कर्ज का है, लोन डेब्ट, और बहुत सारे लोग नमाजें भी पूरी नहीं पढ़ पा रहे, और जुमे की नमाज छुटती है कमाना इतना क्योंकि किस्तें देनी है, तो हम एक कोर्स कर रहे हैं इस वक्त ऑलरेडी अटलांटा में, उसकी आखिरी क्लास अभी इसमें, लेकिन वो अभी तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन ये कार्ड अभी नया बना है और आपके लिए स्पेशली ये छपा है कि आप इसे फ़ायदा, तो हमने ये प्लान किया था कि इस पूरी सीरीज़ में इसकी दुआएं आपको याद करवानी और इसकी तफसीर, 6 दुआएं हैं टोटल, आप ये देख रहे हैं, उर्दू में भी है नीचे, इंग्लिश में भी है और अरबी इंग्लिश में, और कुछ नहीं तो दुआएं आपके सामने लिखी हैं, आप ये कार्ड लेकर अपने लिए पढ़ कर साथ दुआ करें, इसमें सारी दुआओं के अंदर कर्ज से निजात, शुरू की जो 5-3 दुआएं हैं इसमें कर्ज से बचने की हैं, और चौथी 5वीं 6ठी दुआ जो ये अगर कर्ज में आप आ गए हैं, बल्कि इसमें वो दुआ भी है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर ओहद पहाड़ जितना कर्ज भी हो तो तुम यकीन से इस दुआ को पढ़ो तो अल्लाह ताला उसकी अदायगी का सामान करता है। तो ये कार्ड अगर आप लोग लेते हैं, इसकी भी हदिया है और ज़्यादा लेने पे कम होगा क्या, आई डोंट नो, यानी आपको पता है कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये आप डालेंगे अगर एक्स्ट्रा गए तो ये स्कूल के लिए सदका होगा इंशाल्लाह ताला, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ले लें, अगर आप आज भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, नहीं तो आप शाम के जितने लेके जितने दर्स हैं उसमें हम लोग इसकी एक एक दुआ किया करेंगे, और इसकी ऑडियोज़ भी आप लोग अगर नहीं भी बाकी दर्स सुन सकेंगे तो इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे इसकी ऑडियोज़ जो है वो आ जाएंगी, जब रिकॉर्ड कर, उसमें तफसीर भी होती है तर्जमा भी होता है, और आप अपने पास रख लें जहाँ नमाज पढ़ते हैं उसके पास रख के, तो आप हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ लें और आप इसके तर्जमे पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। देखिए ये तो चंद चीज़ें हैं सिर्फ इस बात का इजहार कि हम अपनी ज़िंदगी को पाक करना चाहते हैं, अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि वो हमें कर्ज़ों के बोझ से आज़ाद करें, हम इस्लाम को एक ज़ाब्ता हयात के तौर पे अपने ऊपर लागू करें और डिसिप्लिन के साथ खूबसूरत तरीके से हम इस्लाम को फैलाएं। आपको जितनी भी कोशिश शुरू में कराई जाती है, यहाँ बैठें वो ना करें, आप देखते हैं कि उसका फ़ायदा बाद में आपको ही होता है ना। तो अगर किसी को कोई शुरू में मुश्किल हुई हो इन ऊपर किसी के, ज़ाहिर है कि अब ये मस्जिद थी, अगर आपको नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे रखा तो मैं इन लोगों की तरफ से आपसे माजरत कर देती हूँ, माइंड ना कीजिए। लेकिन यह है कि अभी इंशाल्लाह शाम का जो दर्स है वो 6 से टाइम बोल दीजिए ज़रा, या आप आके कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कह दीजिए। और ये स्टॉल का भी मैं चाहूँगी कि भगदड़ ना मचाएं, दो साथी वहाँ खड़े हो जाएं और सुकून से इत्मीनान से चीज़ें ले लीजिए। और साथ सदका जारिया बॉक्स भी रखा हुआ है, आप अगर चाहते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स में कहीं भी आपका हिस्सा डले तो आप अपनी खुशी से भी डाल सकते हैं। ये सब आपकी अमानत है जो इंशाल्लाह खैर के कामों में लगेगी।
आपका प्रोग्राम हमें नहीं पता,
मिल
शाम
नहीं,
को भी
फ्लायर है
अगर
आपके पास आज का ये जो हमारा चल रहा है सिलसिला?
हम तो समझते भी हैं,
नहीं, आइए इधर सर। आप सिस्टर जी क्या नाम है इनका, शेनाज, शिवा, अभी नाम याद नहीं हुआ जी। शिवा आप सुकून से, आपसे लेके अगला फिर कल के जो भी लोग पब्लिकली दर्स हैं आप एक एक करके बोल दें। और आप सिस्टर्स जहाँ आ सकते हैं आप वो नाम नोट कर लें, बाद में ये लोग इधर ही हैं फिर आपको बताएंगे। अगर एक फ्लायर आप इधर खोल दें, बल्कि सबसे आसान तरीका है कि आप अपने फ़ोन नंबर यहाँ लिखाए हुए, नहीं लिखाए तो लिखा दें तो आपको वो
मैं
फ्लायर
व्हाट्सएप पे
हम भेज
आपको,
देते हैं जी। आप अच्छे तरीके से बता दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। आज शाम को क्रिस्टल लेक पर है, अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं पूरा फ्लायर और एड्रेस के साथ, आप लोग अभी हम लोग डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं तो, और कल के लिए भी, कल स्कोकी में एक है और एक इनके घर पे नहीं है, नादिया प्लीज़ अपना मम्मी का एड्रेस बता दो।
ये दुआओं की बुक है, इसमें पूरे कुरान की दुआएं हैं, ये मैंने नहीं बताई।
कल सुबह, कल सुबह 10 से 12 इनके घर पर है, ठीक है। फिर शाम को 6 से 8 दीवान पर होइन और दीवान पर, फायजा आप प्लीज अपनी मम्मी का एड्रेस बता दो उनकी अम्मी के घर पे। गरीब नवाज जो रेस्टोरेंट है ना दीवान पे, और दीवान एंड होइन 6 to 8, और ट्यूसडे को मॉर्निंग में 10 to 12 गैरियन में है, एंड आई अंडरस्टैंड कि वो दूर है। जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो अपना नंबर मुझे दे दें, मैं उनको पूरा एड्रेस इंफॉर्मेशन टाइमिंग हर चीज़ पूरा फ्लायर में व्हाट्सएप पे या मैसेज कर सकती हूँ। किसी के पास और कोई क्वेश्चन है?
नाम क्या है?
इफ़त मकबूल जी, NQ
थोड़ा सा कुछ
डैश
क्लासेस हैं जिनके
इंटरनेशनल
बच्चों
डॉट
दे दें, जो
कॉम
व्हाट्सएप वगैरह पे लेती हैं, मैंने कहा थोड़ा सा इनको फ़ायदे के लिए
जी,
बता दीजिए।
मैं इनको इस तरह पहचाना कि व्हाट्सएप पर इनके बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं, तजवीद क्लास, सारी क्लासेस फ्री हैं, तजवीद, मेमोराइजेशन ऑफ कुरान, तफसीर सूरा बाई सूरा, तज़किया ग्रुप, तज़किया ग्रुप में छोटी छोटी सूराज का, जैसे एवरी डे आपके फ़ोन पर जो है छोटे छोटे 20 मिनट्स के लेक्चर्स आ जाते हैं। फ़ायदा क्या होता है इससे, मैं गाड़ी में अगर बैठी हुई हूँ या किचन में काम कर रही हूँ, लैपटॉप खोलने की सुस्ती, फ़ोन फ़ोन हर वक्त हाथ साथ में होता है, कान में हेडफोन लगाया, वॉशरूम भी धुल गया साथ साथ एक तरीके से, बात मतलब सारा काम भी होता रहता है, और आप नहीं, सॉरी वॉशरूम नहीं, सॉरी जो भी मतलब सफाई साथ काम भी होता रहता है, इन इन केस अगर टाइम नहीं है, मगर डेफिनेटली अगर टाइम हो तो बेस्ट है। मेमोराइजेशन ऑफ कुरान भी आजकल चल रहा है, जिसमें हम रात के वो कर रहे हैं, जिसमें सूरह सजदा और सूरह मुल्क याद कर रहे हैं, और रात को सोने के आदाब कि किस तरह क्या क्या काम करके सोना चाहिए ताकि हम पूरी रात नाइटमेयर से बच सकें, यानी कोई सुन्नत तरीके से सोना, जिसमें सूरह मुल्क और सूरह सजदा, ये सारी कुरानी जो एटलीस्ट कुछ सूरह तो हमको याद होनी चाहिए। और उसका तरीका ये है,
अज़ान शायद मस्जिद में होने लगी है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
बुलैना इन्नक अंत तो बाबुर रहीम وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما, ہماری نیتوں کو خالص کر دے, سب کی دلوں کی جائز حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما, اور یا اللہ ہمیں اپنے تعلق کی اور اپنے رسول سے محبت کی کوشش کرنے والا بنا, اور یا اللہ ہمیں علم کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے. جو بھی ساتھی آئے اور جو نہیں آ سکے, جنہوں نے بھی اس محفل کا اہتمام کیا, ان کی اس نیکی کو قبول فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر, آپ سب سے مل کے بہت اچھا لگا. آپ نماز پڑھ لیجیے آپ لوگ, ہم لوگ انشاءاللہ جب ادھر ہیں تو بعد میں ملاقات کرتے ہیں. جی دیکھیں میں نے آپ کی خوشی کے لیے لے لی, آپ یہ لے لیجیے, میں نے آپ کا وہ لے لیا تھا, آپ یہ لے لیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کے؟
یہ خرت وہ خرت پروجیکٹ ہے نا؟
جی جزاک اللہ خیر. یہ نا ادھر یہ صرف
شبانہ کو دینا ہے. اچھا
اس کے اوپر لکھا ہوا تھا
میں نے,
اوپر لکھ دیجیے.
آپ کا سنا تھا نیو جرسی میں بھی, جب استقبال رمضان ہوا تھا میں وہاں گئی تھی,
لگ رہا مجھے
ملی تھی میں آپ سے وہاں.
جی آپ آپ میرے گھر میں سیونتھ ممبر ہے, گھر میں دن رات میں آپ کا ہی بیان سنتی ہوں. میرے بچے بولتے ہیں مما شی از لائک دا سیونتھ ممبر.